खुदावन जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा के बंदा पालूस रसूल के वसीला से, जो खुदावन यसु मसीह का एलची रसूल और ऐसा जानशी था जिसने अपनी ज़िंदगी के उन तमाम अयाम में, जब उसने खुदावन यसु मसीह को देखा, उसकी ताबेदारी में गुजारे और उसने कैद की हालत में सच को लिखा, और हर एक ईमानदार के लिए उसने इस सच को साबित कर दिया कि जैसे वो अपने लबों से कहता है, जब हम देखते हैं फिलिपियों 4 बाब उसकी 13 और 14 आयत, कि मैं अपने ताकत बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूँ। हम भी अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद यसु मसीह में उसके जोर में सब कुछ कर सकते हैं। वो कहता है मैंने घटना भी और बढ़ना भी सीखा है। वो कहता है कि मैंने मार में, भूख में, बेदारी में, हर तरह की हालत में ये बात सीखी है कि अपने जोर बख्शने वाले में सब कुछ कर सकता हूँ। सो हम सबको वही कुव्वत हासिल है जो पालूस रसूल को रूहुल कुद्दस की रहनुमाई कुव्वत हासिल थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हर एक बंदे और बंदी से ये वादा किया था कि मैं जाऊंगा और एक मददगार आएगा, और वो मददगार आज हम सब के अंदर रहता है। इसलिए उसी के पाक रूह की मदद से हम उसके मुजस्सम कलाम यीशु मसीह को समझ सकते हैं। सो आए हम इफिसियों 5 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ें। खुदावन के कलाम में यूं तहरीर किया गया है, पस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानत बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम्हें हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। मुकद्दसों को क्या मुनासिब है, हमने इस पर गौर की थी कि हम मुकद्दसीन हैं। याद है आप सबको कि खुदा हमें बरगजीदा कहता है, अबलीस हमें क्या कहता है, तुम बरगजीदा नहीं हो। सो पालूस रसूल क्या कहता है, जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है। हम सबको बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, मुकद्दसीन, मुकद्दस लोग, अलहदा किए हुए लोग, पाक किए हुए लोग, चुने हुए लोग, जिनको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर पाक और साफ किया है। तो आगे हमने देखा था, और ना बेशर्मी और बहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। मुकद्दसों को मुनासिब नहीं कि उनमें ये काम पाए जाए जो अभी हमने पढ़े हैं, बल्कि क्या हो, शुक्रगुजारी हो। हर एक बात में ईमानदारों के लिए ये वाजिब है कि शुक्रगुजारी करें। और पांचवी आयत के बाद हम 5वीं आयत पर कल हमने गौर की थी, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, जो बुतपरस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। जुमलों पर जब हम गौर करते हैं, क्या लिखा है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। जब बहुत दफा हम दुआए रबानी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम जब इस जुमले को गौर से पढ़ते हैं, तो इस पर हमें रोशनी मिलती है। पढ़ते हैं ना, तेरी बादशाही आए, कहते हैं ना, बहुत दफा लोग जल्दी जल्दी में कहते हैं तेरी बादशाहत आए। बादशाही में एक बादशाह होता है, बादशाहत में कितने ज्यादा बादशाह होते हैं। सो इसलिए हमें बड़े गौर से पढ़ने की जरूरत है, जैसे इंग्लिश में किंग और किंगडम्स, यानी कि बादशाही एक ही बादशाह होता है, बादशाहत, उसमें बहुत से बादशाह पाए जाते हैं। सो हमें गौर से पढ़ने की, समझने की जरूरत है कि खुदा और मसीह की बादशाही में कुछ मेराज नहीं। ये उन लोगों की हालत है, ये दो तरह से इस आयत का अतलाक होता है, उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उनका कोई हमेशा की जिंदगी और मसीह और खुदा की बादशाही से तल्लक नहीं है। फिर उन ईमानदारों की तरफ इशारा है जो ईमानदार जिस्म की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं। मेरे साथ आप पीछे जरा 2-3 सफ़े पीछे जाएं, गलतियों 5 बाप। 5 बाप में पालूस रसूल किन से बात कर रहा है? ईमानदारों से। किन से? ईमानदारों से। हम ये किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि पालूस रसूल यहां पर ईमानदारों से ही, मुकद्दसीन से ही बात कर रहा है। हमें सिर्फ देखना होगा कि क्या कहा गया है, किस तरह से पढ़ना होगा। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि पालूस रसूल कहता है 19वीं आयत में, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, भुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पहश्तर जुता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे। किन से बात हो रही है? ईमानदारों से। क्यों हम ये कह सकते हैं कि ये वाकया ही ईमानदारों को कहा गया है? मेरे साथ देखें गलतियों 5 बाप, उसकी पहली आयत। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। सो किन से बात हो रही है? आजाद किए हुए किनको कहा गया बाइबल मुकदस में? जिनको मुकदसीन या ईमानदार या निजात मिली हुई है। इसलिए पालूस रसूल कहता है कि ये वो जिस्म के काम है जो ईमानदार तब करेगा जब जिस्म की बात सुनेगा। आपने कभी सुना होगा जब आपको कोई फैसला करना हो तो आपके अंदर दो आवाजें चल रही होती हैं, एक मुस्बत एक मनफी। जो मुस्बत है वो पाक रूह की तरफ से है, वो रूह की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। जो मनफी है वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। बाज दफा मनफी बात खुदा की तरफ से होगी, जैसे खुदा ने पालूस को कहा था फलां जगह पर ना जाना और पालूस गया। मूसा को खुदा ने कहा था कि तू उस पहाड़ पर मेरे कहने के मुताबिक उस वक्त जब मैं कहूं आसा मारना, और उसने बगैर सुने मार दिया। और बहुत सी बातें हैं। यहां पर फिर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? वो लोग जो जिस्म के काम करेंगे, जिस्म की कुव्वत और ताकत में जिंदगी बसर करेंगे, जिनमें वो तमाम काम, ये तकरीबन 15 काम है जो जिस्म के काम है जो जाहर किए गए हैं, ये वो 15 काम है जो ईमानदार, गैर ईमानदार तो करते ही हैं। गैर ईमानदारों में हरामकारी कोई नई बात नहीं पाई जाती। वो वफादार खुदा से नहीं, वो वफादार अपनी बीवी से नहीं, वो वफादार अपने आप से नहीं, वो अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, इन तमाम कामों को गैर ईमानदार तो करते हैं, लेकिन ईमानदार भी इनमें मुबतला हो जाते हैं। याद है 40 दिन खुदा का बंदा मूसा पहाड़ पर गया, खुदा से बातें करता रहा, वापस आया तो लोग जिस्म के कामों में मुबतला हो गए। उन्होंने खाया पिया, नाचने कूदने को उठे और बुत बनाकर, उस बछड़े को बनाकर क्या की? उसकी इबादत की। वो कौन थे सब? ईमानदार। ईमानदार ही थे कि उन्होंने खुदा की आवाज को सुना कि मैं तुम्हारा खुदावन खुदा हूं, मिस्र से निकाल कर तुम्हें मुल्के कनान में लेके जाऊंगा, और उन्होंने यकीन किया और चले और कहा मूसा तू हमारे लिए खुदा से बातें कर, कलाम कर। और जब मूसा ने देर की तो उन्होंने क्या किया? रूह की रहनुमाई नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशों के ताबेदार हो गए। सो ईमानदार भी इन बातों, इन कामों में मुबतला हो सकते हैं। ईमानदार भी नापाकी की जिंदगी का चुनाव कर सकते हैं। ईमानदार भी शहवत परस्ती में फंस सकते हैं। याद है यीशु मसीह ने कहा था कि पहले कहा गया था कि तुम किसी औरत के खिलाफ जना ना करना, हुक्म दिया गया था ना, तुम अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस किसी ने अपने जहन में सोच ही लिया शहवत परस्ती की, वो गुनाह कर चुका। सो ईमानदार भी इस गुनाह में शामिल हो सकते हैं। बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद, झगड़ा, हम सबको हसद, झगड़ा, गुजरा, सब कुछ आ सकता है। इसलिए ये कब होगा? जब हम जिस्म के मुआफिक जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या लिखा है? ये तमाम काम करने वालों की, अगर ईमानदार है तो खुदा की बादशाही के वारस ना होंगे। सो यहां पर वारस होने से मुराद यही है कि फिर उनकी कोई मिरास नहीं होगा, उनका कोई विरसा या हिस्सा या जो उनको इख्तियार है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम सब किस लिए पैदा हुए हैं? उस खालक ने हमें मखलूक किया है कि उसके नेक अरादों को पूरा करें। सो ये बात चाहता था कि आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत दफा जब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कलाम सुनाया जाता है तो ईमानदार इस बात से घबरा जाते हैं कि खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। वारिस, मेराज और हमेशा की जिंदगी दो लहदा बातें हैं। हमेशा की जिंदगी के मालिक होना वो उसी दिन हो जाता है जिस दिन आप और मैं या कोई भी यीशु को कबूल करता है। वारिस, जब हम अपना विरसा, क्या लिखा था आपने को याद है रोमियो 8 बाब उसकी 16 और 17 आयत में, 15 और 16 आयत में, कि अगर हम बेटे हैं तो वारस भी हैं, बशर्ते के उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। सो क्या लिखा है कि जो ईमानदार मसीह और खुदा की नाफरमानी में जिंदगी गुजारेंगे वो अपनी मेराज को खो सकते हैं। क्या लिखा है? बादशाही में, बादशाहत में नहीं। इसलिए जब भी अगर आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी दुआए रबानी पढ़ते हैं तो उसे जरूर गौर से देखें कि किस तरह पढ़ते हैं। बहुत दफा तेरी बादशाहत आए, बहुत से लफ्ज खा जाते हैं, सही लफ्ज है तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सो इसलिए 6 आयत में पालूस रसूल ये इंतबाही तौर पर, असलाही तौर पर, नसीहती तौर पर ये बातें कहता है कि मुकद्दसों को मुनासब नहीं कि उनमें जिस्म के काम पाए जाएं। वो जिस्म के काम करें, वो जिस्म के कामों की तरफ मतवजा हों। इसलिए वो कहता है 6 आयत में, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। हमने इस पर भी कम से कम 15-20 दिन इस मजमून पर सीखा था कि कोई हमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे। वो बेफायदा बातें इंसान की तरफ से, रवाजी तरफ से, समाजी तरफ से या किसी और तरफ से हो सकती हैं, उनमें बहुत सी बेफायदा बातें हैं जो हम बहुत दफा करते हैं। इफिसियों 5 बाप उसकी 6 आयत, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। जो बेफायदा बातों में लोगों को गुमराह करते हैं, पालूस रसूल कहता है, इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर, नाफरमानी के फर्जंद, बाइबल मुकद्दस में खासल खास गैर ईमानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत दफा जब ईमानदार भी नाफरमान हो जाते हैं तो उनको नाफरमान कहा जाता है। जैसे हम बेटे हैं अपने माँ बाप के, लेकिन हम नाफरमान हो जाते हैं, अपनी मन मर्जी जिसे कहते हैं करते हैं, बाप और माँ की या फिर अपने बुजुर्गों की बात जो फायदामंद हो उसे ना सुनना, उसे क्या कहते हैं? नाफरमानी करना। ईमानदार भी नाफरमानी के इस गुनाह में मुबतला हो सकते हैं। इसलिए हमें नाफरमान नहीं होना, हमें नाफरमानी कि इस गुनाह में नहीं गिरना, क्योंकि पालूस कहता है कि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजल होता है। नाफरमानी के फर्जंद यहाँ पर अबलीस के फर्जंदों को कहा गया है, खासल खास उन फर्जंदों पर जिन्होंने खुदावन खुदा को कबूल नहीं किया। और आगे क्या लिखा है, पस उनके कामों में शरीक ना हो, उनके कामों में शरीक ना हो। हमें तारीकी के कामों में शरीक नहीं होना, इसलिए पालूस रसूल कहता है 8वीं आयत में, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। हमने इस आयत पर गौर की थी कि इस आयत एक आयत में माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात की जा रही है। माजी में हम तारीकी थे, हाल में हम नूर के फर्जंद हैं, और मुस्तकबिल में नूर के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारनी है। तो इस आयत में तीन हमें मजमून मिले थे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, हम कौन थे, हम क्या हैं और क्या होंगे। हम तारीकी के फर्जंद थे। दाऊद नबी क्या कहता है, मेनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। अय्यूब नबी क्या कहता है, जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और उसकी जिंदगी गुनाह से भरी हुई है। यशाया नबी क्या कहता है, हम सब अपने आप से रास्तबाजी पैदा नहीं कर सकते, हम सब नारास्ती से भरे हुए हैं। पालूस रसूल क्या कहता है रोमियो 10 बाप में कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 10 बाप में वो क्या कहता है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। सो यहां पर पालूस कहता है तुम तारीकी थे। तुम का लफ्ज इतजमाई तौर पर, जमायती तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मगर अब खुदावन में नूर हो। हम खुदावन में अब क्या हैं, नूर। नूर से मुराद तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हें रोशनी मिली है, तुम्हारी तारीकी दूर की गई है, तुम पहले अंधे थे। इसे किस कई तरह से बयान किया जा सकता है, पहले तुम अंधे थे अब तुम देख सकते हो, पहले तुम मुर्दा थे अब तुम जिंदा हो, पहले तुम तारीकी में थे अब तुम नूर में हो, पहले तुम कुछ भी नहीं थे अब तुम खुदावन के फर्जंद हो। अब खुदावन में नूर हो, पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और 9वीं आयत, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। ईमानदारों को ये फल लगने की जरूरत है। ये कौन से फल हैं, नूर के फल कौन से हैं, मेरे साथ देखें। नूर जब जब भी इस्तेमाल किया गया है किसके लिए इस्तेमाल किया है, खुदा के लिए, पाकीजगी के लिए, खुदा के रूह के लिए, और सिर्फ खुदा की जात के लिए। कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया है लफ्ज नूर अबलीस के लिए, जब वो कहता है कि अबलीस के फर्जंद भी नूर के हम शक्ल, नूरानी फरिश्तों के हम शक्ल बन जाते हैं। हम शक्ल बनते हैं किसके, नूरानी फरिश्तों के। अगर वो नूरानी फरिश्तों के हम शक्ल बनते हैं, क्योंकि वो है नहीं, हम तो नूर हैं, हमें उस नूर के फर्जंद बनने की जरूरत है, यानी कि उसके पैरोकार, उसके हम शक्ल, उसकी कॉपी। जब अंताकिया में पहली दफा ईमानदारों को मसीही कहा गया था, तो उसके पीछे जो सोच पाई जाती है, मसीही जिसे क्रिश्चियन इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में मसीही, उसे कहते हैं मसीह की कॉपी। किसकी कॉपी, मसीह की कॉपी। कभी आप फोटो स्टेट कॉपी पर गए हैं, फोटो कॉपी करवाने के लिए जाते हैं, तो वो रूबरू उसकी कॉपी निकाल कर आपको दे देते हैं। अंताकिया में जब पहली दफा मसीहियों को, ईमानदारों को मसीही कहा गया था, तो मसीह उनमें देखा गया था। हमें भी मसीह की कॉपी बनना है, मसीह के हम शक्ल बनना है। जल्द मैं इस बात पर काम कर रहा हूं, जिसे मेंबरशिप कार्ड है, उस पर जो हमारा टीचिंग होगी, जिस पर हम देखेंगे, उसमें तकरीबन 10 बुनियादी बातें हैं जो हर एक कलीसिया में होनी चाहिए, और उस अहद को लेने से पहले सबको उस अहद को बयान किया जाएगा कि क्या आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इस अहद पर यकीन करते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, हम एक दूसरे की फिक्र करेंगे, हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे, हम एक दूसरे का भला करेंगे, हम एक दूसरे की तरक्की चाहेंगे, हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को मानेंगे, हम यीशु मसीह की हम शक्ल कलीसिया यमीन पर बनेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको कहूं जी कि ग्रेस बाइबल चर्च का रजिस्टर पड़ जाए, उसके 500 मेंबर हो जाएं, लेकिन चाहता हूं 10 हों, 20 हों, हमको पता हो कि हम मसीही कहलाते हैं, तो हमें क्या होने की जरूरत है? मसीह की कापी, मसीह की कापी। सो मसीह की कापी बनने के लिए नूर का फल क्या है? गलतियों 5 बाप उसकी 22वीं आयत। नूर का फल क्या है? ये हर एक ईमानदारों में लगना चाहिए। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्बुल, मेहरबानी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफ नहीं, ना आसमानी शरीयत मुखालफ है, ना जमीनी, ना कोई और। इसलिए हम नूर के फर्जंद हैं। क्या हम नूर के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? नूर के फर्जंद माफ करते हैं, क्या हम एक दूसरे को माफ करते हैं? यीशु मसीह के पास जब पतरस और दूसरे शिगिर्द आए तो पतरस ने पूछा कि खुदावंद यीशु, मैं अपने भाई को कितनी दफा माफ करूं? याद है वो जुमला, 70 दफा। जब उसे जमा किया जाता है तो कितनी दफा बनता है? एक दिन में 490 दफा। जब 7 के 70 दफा को जमा किया जाए, 7 को 70 से जमा करें, तफरीक तकसीम करें, तो 490 बनेगा। एक दिन में माफ करना है चाहे कैसा भी गुनाह हो। सालन चुराया है, माफी। पैसे चुराए हैं, माफी। बुरी बात कही है, माफी। झगड़ा किया है, माफी, 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 माफी। क्योंकि अगर हम माफ नहीं करते तो पालूस रसूल कहता है कि अगर हम, जिस तरह हमारे कर्ज माफ किए गए हैं, अगर हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ नहीं करेंगे तो वो भी हमें माफ नहीं करेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अगर तुम अपने कर्जदारों को माफ ना करोगे तो मैं भी तुम्हारे कर्ज माफ नहीं करूंगा। कर्ज से मुराद यही कि किसी ने गुनाह का कर्जा चढ़ाया आप पर, हसद का, लड़ाई का, भुगज का। हम ईमानदारों को मसीह की कापी बनना है जमीन पर, और ये कब होगा? फिलिपियों मेरे साथ निकालें, फिलिपियों 4:13। काश के हम सब ईमानदार, मुकद्दसीन, मुकद्दस लोग, बेऐब लोग, खुदा के चहीते इस राज को जान जाएं जो पौलुस रसूल जान गया था और उसने अपने पूरे दिल से माना था। फिलिपियों 4:12-13। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। एक आयत में पालूस रसूल अपनी वो तमाम हालतों को जिसमें से वो गुजरा है बयान करता है। फिलिपियों 4:12 और 13वीं आयत में वो कहता है, जो, क्या कहता है? जो, सब मेरे साथ कहें, जो मुझे ताकत बख्शता है। ये नहीं बख्शेगा या बख्शी थी, जो मुझे हर रोज ताकत बख्शता है, वो मौजूद है, वो मौजूद है, उसकी कुदरत मेरे साथ है, उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आप कह सकते हैं, यीशु मेरे दिल में किसी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आप उसे माफ कर सकते हैं। नतीजा खुदा पर छोड़ दें। माफ 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 करना है, और इसका अंदाजा अपनी जिंदगी में लगा सकते हैं। क्या यीशु मसीह ने कभी कहा है कि जब हम उसके पास जाएं, यीशु मसीह मैंने आज अनजाने में झूठ बोला है, तेरे गुनाह माफ हुए बेटी, जा इत्मीनान से। क्या कभी यीशु ने पीछे से आवाज मारी है, एक झूठ माफ किया है लेकिन वो 15 है जो अभी नहीं माफ किए? बहुत दफा हम ऐसा करते हैं। हम क्यों नहीं मसीह जैसा रवैया अपनाते? क्योंकि बहुत दफा हम जिस्म की ख्वाहिशों में, जिस्म के कामों में जिंदगी बसर करते हैं। बहुत दफा हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर अपनी तवज्जो लगा लेते हैं, मैनू दुख पहुंचाया मैं भी दुख पहुंचाना, दंद दे बदले दंद, अख दे बदले अख, चंड दे बदले चंड, झूठ दे बदले झूठ। हम ईमानदारों को इस बुनियादी सच से वाकिफ होने की जरूरत है। इस सच के लिए पासबान की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जब लड़ाई झगड़ा हो तो एक दूसरे को उसी वक्त माफ करें। सो इफिसियों 5:5, इसलिए नूर का फल हर तरह की नेकी और रासबाजी और सच्चाई है। तो अगला मजमून हमने सीखा था चंद हफ्तों के लिए, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। खुदा को पसंद है माफ करना। जबूर 103 में लिखा है कि मैंने तुम्हारी बदियों को, तुम्हारे गुनाहों को जैसे मशरक मगरब से दूर है वहां पर फेंक दिया है। हम अपने माफ करने वालों की अगर बदी को सिर्फ दीवार के पीछे फेंक दें तो हम देख नहीं सकते। वो खुदा जबूर 103 में क्या कहता है, पढ़ना चाहते हैं? आए के पादरी साहब कहते टेवे तो नहीं ला रहे हैं। जबूर 103 10 आयत, उसने, किसने? उसने, खुदावन खुदा ने क्या किया है? उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया। अगर हमारे गुनाहों के मुआफिक सलूक करता तो हम में से कोई भी यहां पर मौजूद ना होता। अगर हमारे गुनाहों के मुआफिक खुदा हमसे बर्ताव करे तो हम कोई भी उसके सामने खड़े हो नहीं सकते। उसने हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं किया और हमारी बदकारियों के, बदकारियों, बदकारी नहीं बदकारियों, गलतियों नहीं गलतौड़, गलते वड़े वड़े गलतियां दे ट्रक। सो क्या लिखा है? और हमारी बदकारियों के मुआफिक हमको बदला नहीं दिया, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर उसकी शफकत उन पर है जो उससे डरते हैं, जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, जैसे मशरक मगरब से दूर है, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी, हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। जैसे बेटा अपने जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। आज का सारा पैगाम इसमें से एक बात लेकर जाएं, माफी, माफी। माफ, माफी। जो माफ किए गए हैं वो माफ करते हैं, जो आजाद किए गए हैं वो आजाद करते हैं, जो नूर के फर्जंद हैं वो नूर में चलते हैं। तो हमें एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है ताकि अंताकिया की कलीसिया की तरह हम भी मसीही कहलाएं, क्रिश्चियन कहलाएं, मसीही कहलाएं। इस बात से नहीं कि इनके परमिट बने हुए हैं, मसीहियों को प्रमाण मिला है, इसलिए ही मसीही हैं। मसीही इस बात से ना कहलाएं कि अपने से बड़ी सलीब हमारे गले में हो। इंताकिया की कलीसिया के दौर में सलीब का निशान नहीं इस्तेमाल होता था। उस दौर में सलीब का निशान नहीं बल्कि मछली का निशान था, बल्कि इससे पहले के मछली का निशान इस्तेमाल जो सलाम के तौर पर या शनाख्त के तौर पर होता, मसीहियों को कत्ल किया जाता था। पालूस रसूल इससे पहले के यीशु मसीह का बंदा बनता, उसका काम क्या था? कलीसिया को तबाह बर्बाद करना। खुदावन खुदा ने हम सब की खुताएं माफ की हैं।